नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जननायक कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच समाप्त। 72 नामांकन पत्रों में 33 नामांकन पत्र रद्द किए गए। लोजपा रामविलास ने अपने कोटे की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सीपीआई माले ने भी अपने 3 उम्मीदवार घोषित किए। और औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पचरुखिया के जंगलों में छुपाकर रखे 7 आईईडी बमों को किया निष्क्रिय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनके पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया।
श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति कल पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान करेंगी। अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं के परिवारजनों ने पुरस्कार ग्रहण किये। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आकाशवाणी से बातचीत में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार का धन्यवाद किया।
मैं बहुत खुश हूं, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बुझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।
भारत रत्न कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बेटी सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए उनके पिता को सम्मानित किया है।
आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरे जीवन उन्हें फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले, तो इस चीज के लिए पूरा जिंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकॉग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में।
चौधरी चरण सिंह की पौत्र जयंत सिंह ने कहा कि उनके दादा को भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
शब्द नहीं है, कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में वहां उस स्थान पे बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं। और मेरे परिवार के कई परिजन यहाँ पहुंच पाए, कई नहीं पहुंच पाए, सब लोग बहुत खुश। पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंची है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उनके हित में लिया है, उनके सम्मान में।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 4 सीटों पर आज नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए इन 4 सीटों पर 39 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। इन सीटों पर 72 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें 33 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया में 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद यहां 15 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। जमुई में भी 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। यहां राजद, लोजपा रामविलास और बसपा के प्रत्याशी सहित 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नवादा में 9 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, यहां अब 8 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं। औरंगाबाद में 12 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, यहां 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इन सभी सीटों पर 2 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा। किशनगंज संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेता जमा खान और दिलीप जायसवाल समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किशनगंज में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। जदयू नेता जमा खान ने दावा किया है कि इस चुनाव में किशनगंज समेत सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है।
नीतीश कुमार जी काम बोल रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश जी का चेहरा ऐसा चेहरा है कि विकास का ही चेहरा है। आज एनडीए हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 का 40 चुनाव जीतेंगे। 40वां किशनगंज चुनाव हम जीत का अच्छा मतलब जाएंगे।
चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीणा देवी, समस्तीपुर से श्रीमती शांभवी चौधरी, खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हाजीपुर संसदीय सीट से पार्टी प्रमुख चिराग पासवान स्वयं चुनाव लड़ेंगे। वहीं जमुई संसदीय क्षेत्र से अरुण भारती पार्टी उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर चुके हैं। भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने कोटे की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने आज पटना में बताया कि आरा लोकसभा सीट से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह और नालंदा से संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया गया है। श्री कुणाल ने बताया कि भोजपुर के अगियांव विधानसभा उपचुनाव के लिए शिव प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है।
हमारी पार्टी के 2 बार करारी से विधायक और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित सदस्य कांग्रेस राजाराम सिंह लड़ रहे हैं और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कांग्रेस संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वे इस वर्ष लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा कर श्री पारस ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर सक्रिय नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत श्री पारस की पार्टी रालोसपा को एक भी सीट नहीं मिलने के कारण श्री पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे लगातार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करते रहे थे, लेकिन हाजीपुर संसदीय सीट शेयरिंग के तहत चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 25 इन्फोर्समेंट एजेंसियों की मदद ली जा रही है।
हमारी लगभग 25 इन्फोर्समेंट डिफरेंट एजेंसीज पूरे बिहार में अलग अलग, जैसे स्टेट पुलिस हो गया, एक्साइज की टीम हो गई, DRI हो गया, हमारा स्टेट एक्साइज ये CGST की टीम हो गई, स्टेट का हमारा कमर्शियल टैक्सेस की टीम हो गई, इस तरीके से डिफरेंट 25 हमारे SSB हो गया, अन्य 25 हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिवली इंसेप्शन और सीजर का कार्य कर रही है। और जहां पे भी अगर कोई भी कैश हो, लिकर हो, फ्रीबीज हो, वैल्यूएबल आइटम्स हो, इस तरीके की जितने भी चीजें हैं का लगातार इंटरसेप्शन और सीजर चल रहा है।
और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के इस अंक में आप सुनेंगे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
मधेपुरा जिले में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा है। इसमें मधेपुरा जिले का आलमनगर, बिहारीगंज और मधेपुरा, जबकि सहरसा जिले का सहरसा, महिषी और सोनवर्षा विधानसभा शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तत्पर है। इसके लिए आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन आंदोलन कराया जा रहा है। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।
हम सभी प्रकार से सजग हैं और हमारा जिला तैयार है, चाहे वो एमसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ईवीएम पार्टी की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मीडिया से कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम या इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वीप एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो हमारा जिला अभी काफी हद तक तैयार हो चुका है, हमारे पदाधिकारीगण सब लोग काफी अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं और हम इसको बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से निर्वाचन कराने की पूरी जो है तैयारी कर ली गई है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल तरीके से मधेपुरा में निर्वाचन होगा। आप सभी लोगों का उसमें सहयोग और कोऑर्डिनेशन अपेक्षित है।
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। धारा 107 के तहत कुल 9000 लोगों को नोटिस किया गया है, इसमें से 3500 लोगों का बॉन्ड भरवाया गया है, जबकि अन्य से बॉन्ड भरवाने की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा सीसीए के तहत लगभग 250 अपराधी हिस्ट्री सीटरों को जिला बदर किया गया है। जिले में इस बार लगभग 70,000 नए वोटर मतदान करेंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है।
मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर का निवासी हूँ। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। मेरे एक वोट से सरकार बनेगी और देश का विकास होगा। मैं अन्य लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो मतदान करे और देश के विकास में सहयोग दे।
मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से जदयू ने दिनेश चंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत ये सीट राजद को मिली है। राजद ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष वत्स।
औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरुखिया पहाड़ के जंगलों में छापेमारी अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए 7 प्रेशर आईईडी बम निष्क्रिय कर दिए गए। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये बम बरामद किए गए, जिसे छापेमारी दल ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। श्री कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीवान की एक अदालत ने 2013 के चिल्हमरवा हत्याकांड मामले में अभियुक्त सीपीआई माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम को रिहा कर दिया है। अमरजीत कुशवाहा जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि सत्यदेव राम दरौली से विधायक हैं। गौरतलब है कि चिल्हमरवा में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक संघर्ष में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माले विधायक को समेत 10 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया था। अदालत के निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए सत्यदेव राम ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था और आज न्याय की जीत हुई है।
एको लोग गवाही नहीं दिया और दूर दूर से गवाह लिया करके और ये 11 बरस हम लोगों को तबाह किया गया। यहाँ से पटना तक हम लोगों ने सभी जगह जा करके न्यायालय में अपना जो है अर्जी सुनाते रहे। भरोसा था, आज वो हमको न्याय मिला है। मैं इसे बहुत खुश हूँ और न्यायालय को बार बार प्रणाम करता हूँ।
मुंगेर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने पॉक्सो एक्ट के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 1 से 5 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। कुल 93.39% शिक्षक सफल हुए हैं। परीक्षा में 1,48,845 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें 1,39,010 शिक्षक सफल हुए हैं। राज्य सरकार ने 4,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। इस सिलसिले में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जननायक कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच समाप्त। 72 नामांकन पत्रों में 33 नामांकन पत्र रद्द किए गए। लोजपा रामविलास ने अपने कोटे की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सीपीआई माले ने भी अपने 3 उम्मीदवार घोषित किए। और औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पचरुखिया के जंगलों में छुपाकर रखे 7 आईईडी बमों को किया निष्क्रिय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।